परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो राम कथा की
जय।
बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
बोलो वाल्मीकि मुनि जी महाराज की
जय।
बोलो ललिता विशाखा राधारास बिहारी की
जय।
निताय गौर प्रेमानंदी
हरि हरि बोल।
निताय गौर प्रेमानंदी
हरि हरि बोल।
सब भक्तों की जय जयकार हो।
हरि बोल।
हरे कृष्ण बोलो सारे। सब भक्तों की जय जयकार हो।
हरे कृष्णा।
गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
बोलो श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की
जय।
बोलो तुलसी माता की
जय।
बोलो भक्ति माता की
जय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदामयं ददाति स्वापदान्तितं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरम् वैष्णवम् श्रीरूपम् साग्र जातम् साह गणा रघुनाथम् वितम् तम् सजीव साद्वैतम् सावधूतम् परीजना सहितम् कृष्ण चैतन्यदेव राधा कृष्णापादाम् साह गना ललिता श्री विशाखापितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो हाथ खड़े करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जोर से प्रेम से
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे
हरे
कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
हरे
राम 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 हरे हरे।
नमो ओम विष्णु बुधाय कृष्ण अभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य बड़े प्रेम से एक बार फिर बोलो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की
जय।
बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारुपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशन। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालको बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, राम कथा के इस तीसरे दिन आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कल रामनवमी है। कल के दिन परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान राम इस धरातल पर अयोध्या में प्रकट हुए थे रामराज की स्थापना करने के लिए, दुष्ट रावण का वध करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। तो कल आप लोग सुन रहे थे कि भगवान राम ने वनवास की ओर प्रस्थान किया। भगवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, भगवान का श्रवण करके उनकी लीलाओं का श्रवण करके हम भी सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं, हम में भी सारे गुण आ सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान केवल कृष्ण हैं, राम हैं, हम उनके सच्चे दास बन सकते हैं। आज हम माया के दास हैं और बड़े दुखी हैं। तो भगवान राम का इतना दिव्य चरित्र के सारे अयोध्यावासी उनके साथ ही हो लिए थे जब उनके भगवान उनके प्रिय राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ वनवास को प्रस्थान किया उन्होंने। तो राम जी आगे बढ़े, और अयोध्यावासियों को सोते हुए छोड़ करके तमसा नदी के किनारे भगवान राम जो हैं रात को चले गए थे। सुबह जब हुई अयोध्यावासी सब उठे, दुखी हो गए, व्याकुल हो गए अपने भगवान के बिना। कहते धिक्कार है हमारे जीवन को, बिना राम के हमारा क्या जीवन है। अगर हम वापस जाएंगे अपनी पत्नियों को परिवार के लोगों को क्या कहेंगे हम बिना राम के वापस आए। रोने लगे, विलाप करने लगे, सभी दुखी हो गई। लेकिन राम भगवान विशेष लीलाएं करने के लिए धरातल पर प्रकट हुए हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि मंथरा जो थी, जो निमित्त बनी माता का कही कि मन को दूषित करने के लिए, वो स्वर्ग लोक की एक अवसरा थी। क्योंकि रावण का वध सवाय राम के कोई नहीं कर सकता था। रावण बड़ा शक्तिशाली राक्षस था और इसलिए वैसे भगवान राम का अवतार हुआ था। तो भगवान आगे चल पड़े, आगे भगवान गंगा के तट पर पहुंचे तो देखो बहुत सारी शिक्षाएं हैं राम लीला में। राम कथाएं बहुत शिक्षाएं हैं। आज हम लोग भक्तिहीन होने के कारण बड़े भेदभाव हम लोगों में आ गए हैं। हम भक्त तो राम के बनते हैं, पर राम की जनता, राम के लोगों से हम भेदभाव करते हैं। राम जी जब गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां निषाद राज गुहु जो कि शूद्र थे, वो राम जी के मित्र थे, बड़े प्रिय मित्र थे। वो एकदम आगे राम जी का स्वागत करने के लिए और बहुत सारे उपहार बड़े भाव से निषाद राज गुहु जो थे भगवान राम के लिए ले आए। तो उन्होंने राम जी के साथ सुमंत्र भी साथी थे जो बड़े प्रिय मंत्री थे महाराजा दशरथ के। देखो मंत्री का अच्छा होना भी बड़ा आवश्यक है। सुमंत्र जी का बड़ा सुंदर जीवन है, उनका भी महाराज दशरथ भगवान राम लक्ष्मण अयोध्या से बड़ा स्नेह था, तो उनका भी स्वागत निषादराज गुरु ने किया और उनको कहा कि प्रभु आप मन में क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने सारी बात सुनाई, ऐसे में पिता की आज्ञा से कि मेरी मां ने दो वर ले रखे थे उनको पूरा करने के लिए, एक में मुझे वनवास भरत को राज। तो देखो भावना का सारस होता है। निषाद राज कहते हैं प्रभु ये जो मेरी नगरी है ये आपकी, आप इसके राजा के बाद आप यहां रहिए और हम सब आपकी सेवा करेंगे। देखो कितना भाव है, ये है भारतीय संस्कृति, कोई मोह माया नहीं है। और बड़े जो उपहार ले आए तो राम जी ने कहा देखो मेरे प्रिय निषाद राज मैं नगरी में नहीं जा सकता, देखो कैसे राम जी की तपस्या, मैं यहीं रहूंगा और जो कंदमूल फल लाए थे बहुत कुछ उपहार लाया था थोड़े से भगवान ने स्वीकार किए बाकी सब लुटा दिए। तो देखो जो जिससे प्रेम करता है ना वो उनकी आज्ञा का पालन करता है। निषाद राज को भगवान ने कहा कि हम यही वन में ही रहेंगे, तो घास फूस नीचे बिछा करके वहां भगवान ने वास किया। और वास करने से पहले, शाइन करने से पहले भगवान ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया। सुमंत्र जी को क्या कहा, देखो हमारे राम कैसे हैं, क्या मेरे पिता का ध्यान रखिए, मेरी माता का, तीनों माताओं का, ककेई मा, देखो ककेई ने ऐसा किया लेकिन राम जी ने कभी से द्वेष नहीं किया, हमने ये सीखना है सब कुछ। उधर से आप देखो युधिष्ठिर महाराज कौरवों के पिता धृतराष्ट्र कितना कष्ट पहुंचाया, लेकिन सब जब मर गए तो अभी वो धृतराष्ट्र अंधा अपनी पत्नी गंधारी के साथ युधिष्ठिर महाराज के साथ रह रहा है, तो बड़े भाव से वो पालन कर रहे हैं। ये नहीं कि इसने हमारा विनाश किया इसको भी हम गोली मार दें, उसने तो सारे षड्यंत्र, अंधा था धृतराष्ट्र उसी का था मेरा पुत्र राज करे, अन्याय कर रहा था अपने भतीजों के साथ बड़े से ढंग से। तो फिर तब विदुर जी आए थे, विदुर ने आके कहा धृतराष्ट्र तुम्हें शर्म नहीं आती, तूने इतना अन्याय इनके साथ किया भी, उनके वहां रह रहा है, छोड़ अभी घर बार और आगे का सोच। तो विदुर जी के समझाने पर रात को जो है दोनों पति पत्नी चले गए वन में रहे और फिर उन्होंने शरीर वहां दोनों ने त्याग किया। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जैसे भगवान वैसे उनके भक्त पांडव शुद्ध भक्त हैं, राम जी स्वयं भगवान हैं, वो भेदभाव नहीं रखते। हमारे मन शुद्ध ना होने के कारण, हम भक्त ना होने के कारण, कभी हम सब भक्त बन जाएं, हमारे मन शुद्ध हो जाएं, तो हमारे भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, हमारे मनों में जो ईर्ष्या है वो समाप्त हो जाएगी। आज हम लोग ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तक ईर्ष्या दंभ कपट इनसे भरे पड़े हैं। ये दोष अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। हमारा गंतव्य स्थान है वैकुंठ लोक गौलोक धाम जहां भगवान नित्य लीला करते हैं। तुम्हारा जीवन प्रायः से बीत जाता है, गंगा के तट पर आकर भगवान ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया, उन्होंने कहा कि आप जाइए। अभी सुमंत्र जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ यहां रहूंगा, रो रहे हैं वो, कितना भाव है, मैं आपके बिना जाकर राजा को क्या मुंह, महाराज दशरथ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अयोध्या वासियों को क्या कहूंगा। राम जी उन्हें समझाते बुझाते हैं, कहते हैं आप जाइए, मेरे माता पिता का ध्यान रखिए, आप सभी रानियों का ध्यान रखिए, 14 वर्ष बीते ही मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, भगवान राम ने रात को वहीं विश्राम किया और देखो ये पहली रात थी और भगवान महलों में रहने वाले मखमली गद्दों पर सोने वाले आज धरती पर वास है उनका। और फिर आप देखो और क्या, लक्ष्मण जी जो हैं वो सारी रात पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने दिन को भी राम जी की सेवा की, सीता माता की भी सेवा की और रात को भी पहरा दिया। क्या कितनी महानता है, ये बड़ा ही दिव्य भाव है। तो गुहू जी, निषादराज गुहू जो थे, वो भी सारी रात को जागते रहे। राम और सीता ने आराम किया और वहां पर रात बिताई। फिर उन्होंने जो है दूसरे दिन उठ करके गंगा जी को पार किया नाव के सहारे। वैसे ये जो केवट का वर्णन तुलसीकृत रामायण में है, पर वाल्मीकि रामायण में केवट का कोई वर्णन नहीं है। असली रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की ही है, क्योंकि वाल्मीकि जी उस समय उपस्थित थे भगवान राम के समय में, और उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जाओ राम जी के दिव्य गुणों का आप गान करो। ब्रह्मा जी का वरदान था उनको, तो ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप ही बड़ा सुंदर वर्णन वाल्मीकि मुनि महाराज राम जी का कर सके थे। तो फिर गंगा जी को पार करके भगवान राम जो हैं अपने भाई लक्ष्मण देवी सीता के सहित प्रयाग जो है वहां के संगम के समीप भरद्वाज आश्रम के पास आए और ऋषि के द्वारा उन ऋषि से पूछा कि हम वन में वास करना चाहते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे राम आप यहीं वास करो, आप मेरे 14 वर्ष मेरे यहां ही बिताओ। राम जी कहते हैं कि देखो ऋषिवर, ऐसा है कि आपको बहुत लोग जानते हैं या बहुत लोग मिलने आएंगे, तो हम शांतिपूर्वक यहां वास नहीं कर सकेंगे। आप मुझे कोई सुंदर स्थान बताओ जहां जाकर के हम वास कर सकें। तो भरद्वाज जी महाराज ने बोलो भरद्वाज जी महाराज की, उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर के अपना वास करें। ये सलाह दी भरद्वाज जी ने भगवान राम को। तो उनकी सलाह पर भगवान राम चित्रकूट, उन्होंने प्रस्थान किया चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट जब भगवान राम पहुंचे तो वहां पर उनकी वाल्मीकि जी से भेंट हुई। वाल्मीकि मुनि जी का भी वास वहीं चित्रकूट पर था। अभी देखो आज बहुत सारी रामायणें हैं जिन्हें कुछ पता नहीं, सब अपना अपना विचार व्यक्त कर देते हैं, बदल देते हैं रामायण को, ये ठीक नहीं। अभी वाल्मीकि जी से भेंट हो रही है भगवान राम की चित्रकूट पर भी, मतलब वहीं पर उनका वास था। तो वहीं पर आगे भगवान राम ने उस जगह को, पर्वत को, चित्रकूट जो है वह पसंद किया। लक्ष्मण जी ने वहां पर कुटिया बनाई और वहां पर सीताराम लक्ष्मण जो हैं वो वास करने लगे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इधर से सुमंत्र जी अयोध्या वापस पहुंचे तो अयोध्या की बड़ी हालत खराब है। ऐसा वर्णन है अयोध्या का कि जैसे कोई व्यक्ति मृतक पड़ा है ना, लोगों ने काम काज करना बंद कर दिया, लोग काम नहीं कर रहे। अयोध्या नगरी सुनी है, सब दुखी हैं। दुखी क्यों है कि राम चले गए, राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए। ये है हमारी संस्कृति। आज तक हमने रामराज्य की कल्पना की, पर कहां है रामराज्य? आशा बस एकमात्र है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी जैसे संत भेजे हैं, अगर इनके चरण चिन्हों पर हम चले, इनके बताए हुए मार्ग पर हम चले, तो रामराज्य आ सकता है। मुझे संदेश में नहीं है। हम सब निस्संदेह प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चले, इनके बताए हुए रास्ते पर चले तो भारत में राम राज आ सकता है, भारत के लोग सुखी रह सकते हैं। पर ये जो डेमोक्रेसी है ना, जिसे प्रभुपाद कहते थे डेमोक्रेसी को, डीमन क्रेजी, डीमन कहता है राक्षस, राक्षस जो पागल हो गए हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते। राक्षसों के राज में जो है ना, कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर कोई सुखी होगा भगवान राम के राज्य में, राम जी का जैसा राज्य था, राम जी की जैसी भावना थी, है प्रजा का पालन, और प्रजा को राम जी से कितना प्रेम है और राम जी को प्रजा से कितना प्रेम है। राम जी अपने माता पिता के कितने आज्ञाकारी हैं वो तो आपने देखा ही, पिताजी ने कहा भी नहीं, ककेई ने बताया तो अच्छा ये वचन दिया है तो उसको पूरा करना है, और भगवान बड़ी दृढ़ता से उस वचन को पूरा कर रहे हैं। सुमंत्र जी जब वापस आए तो उन्होंने जो है ना क्या दिशा देखी अयोध्या की, सारे अयोध्या वासी जो हैं शोकाकुल हैं, शोक मना रहे हैं, जैसे किसी का बड़ा प्रिय कोई मर गया हो ऐसा शोक लोग मना रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने पर। तो सुमंत्र जी जो हैं वो पहुंच करके उन्होंने राम का संदेश दशरथ जी को बताया, और दशरथ जी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं राम के विरह में। और देखो आगे आप देखेंगे कि दशरथ जी ने तो राम के विरह में प्राण ही छोड़ दिया अपने। ऐसा हमारा भी प्रेम भगवान राम से होना चाहिए, हम राम जी से इतना प्रेम करें, राम जी से हमारा इतना स्नेह हो कि हम कभी राम हमको भूलने तुम्हारे प्राण शरीर से निकल जाए, वही हमारे जीवन की सफलता है, नहीं तो जीवन विफल है। राम के स्मरण के बिना जीवन बेकार है। तो सुमंत्र जी जब पहुंचे तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हैं, पूछते हैं मेरे बेटे राम लक्ष्मण को, मेरी पुत्र वधु को तुम लाए? कहते नहीं, वो उन्होंने आपका ध्यान रखने के लिए मुझे कहा कि मेरे पिता का ध्यान रखना, कहां मेरे बेटे, कहां वो रात को सोए, क्या खाया उन्होंने, वो तो कोमल या महलों में रहने वाले, कैसे वो वन में चल रहे हैं, कैसे चलते होंगे, उनको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा, मेरी पुत्र वधु सीता इतनी सुकुमारी है उसको कितने कष्ट हो रहे होंगे। दशरथ महाराज ये सोच रहे हैं। दशरथ जी को संदेश दिया कि राम जी ने बस आपका ध्यान रखने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और 14 वर्ष बीते ही मैं वापस आ जाऊंगा। अभी जब राम जी नहीं है तो अभी दशरथ जी बहुत दुखी हो गए। दशरथ जी आशा कर रहे थे कि सुमंत्र जो हैं वो राम लक्ष्मण जी को वापस ले आएंगे, लेकिन राम जी बड़े पक्के, पर देखो ना कि राम जी को और भी कार्य करना था। राम जी को क्या कार्य करना था कि उन्हें जो है रावण का भी वध करना था, वो भी बड़ा जरूरी था। कैसे जाते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेन जो काम था रावण के वध का था। अभी बड़े दुखी होकर दशरथ जी जो नेत्रहीन हो गए हैं, दशरथ जी की नेत्र ज्योति चली गई है और कुछ नहीं देख पा रहे, रो रो करके उनको दिखाई नहीं दे रहा। कौशल्या जी उनके पास बैठी हुई है, कहती है देवी मैं कुछ नहीं देख पा रहा, रो रहे हैं, देवी मेरा स्पर्श करो, मुझे लगे कि तुम यहां मेरे पास बैठी हो। अभी दशरथ महाराज क्या कहते हैं देवी कौशल्या को, क्या देवी उनको एक, जब वो राजकुमार थे दशरथ जी महाराज, उनको एक बात याद आ गई। बात क्या याद आई उनको, कि देवी मैं एक बार रात को शिकार खेलने निकला था। महाराज दशरथ के पास ऐसी विद्या थी जिसे कहते हैं शब्द वेदी बांध छोड़ना। शब्द वेदी बांध क्या है? आवाज को सुनकर बांध चलाना। तो आवाज को सुनकर बांध छोड़ने से देखो वहां पर बांध जाके लगता था। तो सुना रहे हैं कि देवी मैं ऐसे एक सरोवर के किनारे था और रात्रि का समय था, तो वहां पर एक आवाज होने लगी गुड़ गुड़ की। मैंने सोचा कोई पशु पानी पीने के लिए यहां आया है, तो मैंने अपने धनुष पर वन का संधान करके बांध को छोड़ दिया। जैसे मैंने बांध छोड़ा तो वहां किसी के चीखने की आवाज आई। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा क्या एक मुनि कुमार मेरे बाण ने उसकी छाती भेज दी और वहां पड़ा कराह रहा है। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं श्रवण हूं, मैं अपने अंधे माता पिता के लिए यहां पानी लेने के लिए आया था। वर्णन आता है कि श्रवण के जो पिता थे वो वैश्य थे, माता शूद्र थी। तो श्रवण जी कहते हैं कि राजन आपने मेरा वध नहीं किया, आपने तीन का वध कर दिया, एक तीर से तीनों को मार दिया। अभी मेरे बिना मेरे माता पिता जो है ना वो जीवित नहीं रहेंगे। आप ऐसा करो, मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, ये लो पानी, ये उनको पिलाओ जाकर। अभी दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हो, मेरे से क्या जानने में क्या कर दिया मैंने। तो अभी वो श्रवण कुमार बड़े दुखी हैं, तो कहते हैं ये राजन मेरी छाती से बाण निकालो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। दशरथ जी सोचने लगे मैं अगर बाण निकालूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब श्रवण जी ने यह बताया था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आप ब्रह्म हत्या का मत सोचो, मैं एक वैश्य पुत्र हूं, मेरे पिता वैश्य हैं, माता शुद्ध रानी है, वो अंधे हैं। देखो श्रवण कुमार जी की मातृ पितृ भक्ति बड़ी मानी गई है। आज ये मातृ पितृ भक्ति भारत से लुप्त हो गई, ये विदेशियों का कल्चर, विदेशियों की सभ्यता भारत में आ गई। आप देखो कि विदेशों में क्या है, वहां मां बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो घर में नहीं रखते उनको, बच्चे ओल्ड एज होम में डाल देते हैं और फिर खबर भी नहीं लेते उनकी। कब मिलने आते हैं उनको? मिलने नहीं आते, कभी आवे गए कहीं आते भी हैं पर प्राय कम ही आते हैं। और आते कब है जब उनको पता लगता है कि मां बाप, मां या बाप मर गए हैं। किस लिए आते हैं? वो लेके जाते हैं मेरा जो जितनी प्रॉपर्टी है मेरे लड़के को और मेरी लड़की को दे देना, प्रॉपर्टी लेने आते हैं। ऐसी उनकी बात नहीं, मैंने बड़े ओल्ड एज होम बहुत देखे अमेरिका में, यूरोप में। ये है विदेशी संस्कृति। मान लो कोई लोग ओल्ड एज होम में अगर नहीं रहते तो वहां ऐसा देखा गया है। एक बार हम इंग्लैंड में थे, वहां पर एक व्यक्ति ने हमें बात बताई सत्संग में कि एक वृद्ध स्त्री अकेली घर में रहती थी, पति ने भी छोड़ दिया है, बच्चे भी लग रहे हैं, ये वहां की सभ्यता है, कोई पारिवारिक जीवन वहां नहीं है। तो औरत बीमार हो गई, बीमार हो गई और चार पर वही मर गई, कोई उसके पास नहीं, किसी को पता भी नहीं, किसी को बता भी नहीं सकी, वो मर गई। तो फिर शरीर उसका सड़ने लगा, पड़ोसियों को जब बदबू आई तो फिर पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ के खोला, देखो सड़ी पड़ी हुई है। ये है विदेशियों का कल्चर। हमारे नेता लोग उस कल्चर को यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारा सौभाग्य नहीं है। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, अपनी संस्कृति को बनाए रखो, इस विदेशियात को वापस कर दो, इसको मत अपनाओ। अगर आप लोग विदेशियात अपनाते हैं आप सबको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए हैं कि हम जीवन काल में अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित कर लें और अपने आप को राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत करके नरक में जाने से अपने आप को बचा ले। नहीं तो हम सब लोग नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विदेशियात क्या, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं है, जीवन का केंद्र विषय विकार, खाओ पियो और मजा करो, ये है विदेशियात। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है? जीवन का केंद्र भगवान है। भगवान ने गीता में ये कहा है कि यत करोषि यदश्नाषि यज्जहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौंतेया तत् कुरुषम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर। ये हमारी संस्कृति है। विदेशियात क्या है? अपने लिए सब कुछ करो। कोई बच्चे भी कहते हैं अभी मां बाप आपने तो सुख भोगा, अभी हमने सुख भोगना है। ये सुख जो है ना, क्या सुख है? यहां पर सब नरक का द्वार। शरीर के स्तर के जो सुख है ना, ये नरक में ले जाने वाले हैं। तो धन है श्रवण कुमार, मातृ पितृ भक्त। श्रवण कुमार जो हैं, उन्होंने मां बाप को कंधे पे उठा करके तीर्थ यात्रा करवाई, उनकी सेवा की। उनके माता पिता अंधे थे। वो बात दशरथ जी महाराज सुना रहे हैं देवी कुशल्या को। कहते मैं बड़ा दुखी हुआ, तो उसके कहने पर, मुनि कुमार के कहने पर, श्रवण के कहने पर, उसने कहा ब्रह्म हत्या की चिंता मत करो तुम, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरा बाण निकाल दो। जैसे मैंने बाण निकाला, बाण निकालने से पहले उसने कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो आप। जैसे मैंने बाण निकाला, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। मैंने पानी का घड़ा उठाया और जैसा मुझे बताया था श्रवण ने, मैं उसके माता पिता के पास आया। वो मुझे अपना पुत्र समझ के कहने लगे, बेटा तुमने बड़ी देर लगाई, कैसे हो तुम? पानी लाए, हम प्यासे हैं। क्योंकि अंधे थे, देख तो कुछ सकते नहीं थे वो। तब उन्होंने जो है, दशरथ महाराज बोले, कहते मैं आपका बेटा नहीं हूं, तुम कौन हो? मैं राजा, उस समय राजा नहीं थे, मैं दशरथ हूं, राजकुमार दशरथ। हमारा बेटा कहां है? उन्होंने सारी बात बना दी, सत्य सुना दिया। ऐसे मैंने अनजाने में मेरे से आपके पुत्र की हत्या हो गई, बस शोकाकुल हो गए, दुखी हो गए श्रवण के अंधे माता पिता। कहते हैं कि तूने हमें सब बता दिया, कभी तुम नहीं बताते तो तेरा सर्वनाश हो जाता, पर तूने अपना दोष स्वीकार कर लिया, हमें बता दिया यहां करके। अभी हम तुम्हें श्राप तो नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने का श्राप नहीं देंगे, पर हम एक श्राप तुम्हें जरूर देंगे, हम अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकेंगे। कौन उनकी ध्यान करता है जैसा श्रवण जी करते थे? हम तुम्हें ये जरूर कहेंगे कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। हमें तुरंत हमारे अपने पुत्र के पास ले चलो। दशरथ जी ले आए उनको, दोनों को, अंधे अंधे को ले आए और उन्होंने पुत्र का स्पर्श किया, बेटा तुम कहां चलेंगे? बड़ा विलाप किया उन्होंने, श्रवण के माता पिता ने बहुत रोए। और रोते रोते उस समय ऐसा भी वर्णन आता है कि इंद्रदेव वहां प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा कि अब सबको मेरे स्वर्ग में स्थान है, श्रवण को भी और श्रवण के माता पिता को भी। तो देखो ये जो श्राप हुआ, ऐसी लिखी थी, भावी ऐसी थी, होनहार बलवान के होते चिकने पात। तो क्योंकि अगर ऐसा श्राप नहीं होता तो राम जी का वियोग नहीं होता दशरथ जी को। तो उन्होंने पुत्र का शरीर स्पर्श किया, जलांजलि दी पुत्र को। आज ये भी समाप्त हो गया है, अगर कोई घर का बड़ा मर जाए उसको जला के आ जाते हैं, कोई क्रियाक्रम कुछ करते नहीं। ये विदेशियां यहां आ रही है, नरक सब जाना पड़ता है। श्रवण के माता पिता ने अपने पुत्र को जलांजलि, जल अर्पण किया और उसके बाद पुत्र की जब चिता बनाई तो दोनों उसमें माता पिता ने जल के जो है अपने शरीरों का त्याग कर दिया। और इंद्रदेव जी उस समय प्रकट हुए थे, वो इंद्रदेव जी जो हैं उनको स्वर्ग में ले गए तीनों आत्माओं को। अभी जब ये बात बता रहे हैं दशरथ जी महाराज, बोलो दशरथ जी महाराज की। दशरथ महाराज जब ये बात बता रहे हैं तो दशरथ जी का राम जिसे इतना प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। और उन्होंने श्राप भी दिया था कि भाई जैसे हम पुत्र वियोग में प्राण दे रहे हैं तेरे पुत्र वियोग में प्राण जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी भी बड़े ही महान थे जिनकी ऐसी दिव्य संतान थी। और दशरथ जी ने दुखी होकर विलखते हुए अर्धरात्रि को अपनी देह का त्याग कर दिया राम जी का स्मरण करते करते। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। ये बात अब यहां के विचारने की बात क्या है मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, आज हम जीवन में जो कर्म कर रहे हैं ना, गलत काम, अंतिम समय हम सबका निकट आ रहा, मेरा भी और आपका भी। ना आप बच सकते हैं उस समय से दशरथ जी का जैसे अभी देहांत तो हो गया, हमका भी देहांत होगा एक दिन, सबका होगा। तो जीवन में जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं ना, वो जैसे एक फिल्म बनती है ना, फिल्म अंत में सारी फिल्म सामने आ जाएगी। जैसे महाराजा दशरथ के सामने सारी फिल्म आ गई, कितने पहले जब बच्चे थे राजकुमार थे तब ये घटना घटी और अभी उनको वो स्मरण हो रहा है। तो हमें यहां ये शिक्षा लेनी है कि जीवन में हम कोई गलत काम ना करें, पाप ना करें। अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो गया अभी हम उनको बंद कर दें और कली पाप नावतार चैतन्य निताय की शरण लें, ये हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं। लोगों से बड़े बड़े जघन्य पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। जब तक हमारी वृद्धावस्था है, दो अवस्थाएं, एक मुक्तावस्था और एक वृद्धावस्था। मुक्तावस्था उसकी है जो भगवान का भक्त बन जाता है। भक्त जब कोई बनता है तो उसकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, वो कभी पाप नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए भक्त बनने के लिए कहा है। अगर हम भक्त बनेंगे ना किसी का बुरा नहीं करेंगे। अभी देखो पांडव भक्त हैं, कौरव दल भक्त नहीं है। पांडव भक्त हैं तो लड़ना भी नहीं चाहते अपने हक के लिए, लेकिन भगवान शिक्षा दे रहे हैं तुम्हें दुष्टों का दमन करना चाहिए। जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। अगर तुम कौरवों का जुल्म सहन करते हो, ये आता ताइन है, इनको मारना तेरा कर्तव्य है अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। अगर तेरे परिवार के लोग हैं तो क्या इनके पास लाइसेंस है पाप करने का? तो भगवान ने शिक्षा दी अर्जुन और पांडवों के माध्यम से, वो लड़े अपने हक के लिए। दुष्टों का दमन करना भी परमावश्यक है। अगर हम दुष्टों का दमन नहीं करते इसका मतलब फिर हम भी दुष्ट हैं, याद रखो। बुराई और बीमारी कैसे बढ़ती है? किसी को कोई बीमारी लगती है, अगर वो उसका इलाज नहीं करता बढ़ती जाएगी। कोई बुराई आती है अगर उसको नहीं रोका जाता वो बढ़ती जाती है। आज हम हिंदू, हमारे हिंदू समाज में सनातनी समाज बड़ा दोष आ चुका है, बड़े निर्दयी हम होते जा रहे हैं। लेकिन चैतन्य भगवान, नित्यानंद भगवान की शरण लो, इस महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जप करो और करवाओ। इससे हमारे सारे दोष जाएंगे धीरे धीरे और हम भक्त बनते जाएंगे। अगर भक्त बन गए, चाहे स्त्री चोला है चाहे पुरुष का चोला है, तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। देखो जब तक पाप होते रहे ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो वृद्धावस्था में कंडीशन स्टेट में जो पाप कर रहे हैं उसका पाप का तो परिणाम भोगना पड़ेगा मेरे को। पर अगर मैं भक्त बन जाता हूं तो पाप करना बंद कर दूंगा। अभी जब मैंने पाप नहीं किए, बुरे कर्म नहीं किए, तो बुरी प्रतिक्रिया नहीं होगी। भक्ति की तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मुझे सुख शांति का अनुभव होगा, मैं भगवान के, मैं कृष्ण भगवान के, राम भगवान के निकट जाऊंगा। भगवान सर्वगुण संपन्न है, हैं, गुणों के सागर हैं, उनके पास जाऊंगा और मेरा जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा। इसलिए वर्तमान ही जो हमारा समाज है, हैं, हिंदू समाज, इनको भक्ति की आवश्यकता है। सबको भक्त बनने की जरूरत है, सब लोग भक्त बने। भक्त बनने से हमारे दोष जो है दूर जाना शुरू हो जाएंगे। आप देखो, जब लोग मिलते हैं, मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं प्रयास करता, लोग हमारे भारत के लोग वहां रहने वाले सब मांसाहारी बन गए, गौ मांस भी खाते हैं, तो मैं प्रयास करता था लोगों को शाकाहारी बनाने का, समझाते थे जैसे प्रभुपाद ने समझाया है। लेकिन प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के बाद प्रभुपाद ने यह कहा कि लोगों को शाकाहारी बनाने का प्रयास मत करो। तो क्या करना है फिर, कौन बताएगा क्या करना चाहिए, हैं? भक्त कैसे बनेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करवाओ। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे ना, तो स्वयं ही दुर्गुण चले जाएंगे, स्वयं ही हम मांस भी छोड़ देंगे, शराब भी छोड़ देंगे, पर स्त्री संघ भी छोड़ देंगे, बुराई सारी छूट जाएंगे। ये प्रभाव है हरे कृष्ण मंत्र का। पहले हम प्रयास, एक परिवार था इंग्लैंड में, था मांसाहारी, यहां से गए हुए शाकाहारी बन गए, दोबारा गया मैं, मैंने कहा कहता हमने फिर मांस खाना शुरू कर दिया, और खत्म लोग। तो हम भक्त बने, हरे कृष्ण मंत्र जपें और जपाएं, हरि नाम करें, हरि नाम। प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया, हरे कृष्ण आंदोलन, हरि नाम से। पार्क में जाकर प्रभुपाद हरि नाम करते थे, प्रभुपाद जी हरि नाम करते थे, और हरि नाम के प्रताप से एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब हरि नाम हुआ, प्रभुपाद जी ने कौन सी तर्जुमे गाते थे, वैसे तो कई तर्जुमे प्रभुपाद ने महामंत्र का कीर्तन किया, लेकिन फेमस तर्जुमा कौन सी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
कही कि भाई जब महाप्रभु जब चैतन्य भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वन्य प्राणी जंगल के पशुओं को झारखंड में कीर्तन करवा दिया। उसमें वाघ, हिरण, सांप, मोर, बंदर, हाथी, जंगली जानवर सब कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने तो भगवान थे वो पशु पक्षियों, पशु पक्षी भी तो वो भी तो आत्मा है ना, उन शरीर में कर्मों के अनुसार पशु पक्षी बने हैं। कि हम मनुष्यों से तो कीर्तन करवाएं, प्रभुपाद ने उन लोगों को हिप्पियों को एलएसडी लेने वाले बेचारे बिल्कुल जिन्हें उनकी भाषा में कहते बम, बम समझ दो ये एटम बम बनी या दूसरा बम बनी, बम कहते हैं यूजलेस इज ए बम, बम मतलब बेकार, बम जो थे बेकार कैसे ड्रग्स लेके पड़े रहते थे पार्क में, उनको वो हिप्पी कह लो, उन हिप्पियों को प्रभुपाद ने हैप्पी बना दिया। इस मंत्र के प्रताप से इसलिए हमको हरि नाम करना और करवाना है बस। मेरी आप सबसे ये निवेदन है, सारे भाइयों से सारे माताओं से हाथ जोड़कर कि आप जहां भी आप रहते हो हरि नाम करो, वहां पर एक जना करो, दो जने करो, चार जने, लोगों के कानों में हरि नाम ला लो, इससे में आपका भी मंगल होगा, जिनके कानों में हरि नाम जाएगा ना उनका भी मंगल होगा, लोग शुद्धि की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये मत सोचो कि सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी, ये असंभव है कि सब लोग भक्त बनेंगे, और बोले अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी, अगर कोई भक्त नहीं बना सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहां मुंबई में ट्रेलर हो चुका है, अब ये मुंबई क्यों बचा हुआ है, यहां राधा रास बिहारी विराजमान है, भगवान प्रभुपाद जी ने स्थापित किया ये विग्रह, यहां ट्रेलर नहीं होता, बाढ़ नहीं आई थी, कितने लोग मर गए थे, कारों में बच्चे मर गए, दरवाजे नहीं खुले, इतना कारें जा रही, कहां से आ रहा पानी पता नहीं लगा, वो ट्रेलर था, लेकिन अब मूर्ख कितने हैं मंदबुद्धि, कई ट्रेलर देखते हैं हमें होश नहीं आती। महामंत्र जपो, कीर्तन करो, करवाओ, होश आ जाएगी, होश आ जाएगी तो बच जाएंगे, बेहोश रहे तो मर जाएंगे। होश हरि नाम से आएगी, भक्ति के द्वारा होश आएगी और हमारा मंगल होगा। ध्यान रखो कृपया, कीर्तन करो, करवाओ, जो मिलता है उनको बोलो हरि नाम जपने के लिए, गुरुदेव कृपा से, गौरांग नित्यानंद कृपा से, पंचतत्व कृपा से, जब से उधमपुर आश्रम बना है ना मां, रोज नियम से हरि नाम होता है, रोज मंगल आरती के बाद भक्त लोग हरि नाम में जाते हैं, क्योंकि जो कलियुग के भगवान है ना चैतन्य भगवान, वो भी सुबह सुबह ही हरि नाम करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया है कि कैसे भगवान गौर हरि चैतन्य महाप्रभु क्या भजन है, उदिल अरुण पूरब भागे ध्वज मनि गौराया मीन जागे भगत समुआ लोया साथे गेला नगर ब्राजे। अभी सूर्यदेव निकलने वाले हैं, निकले नहीं तो महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर हरि नाम के लिए चल पड़ते थे। ये भगवान ने स्वयं किया हमें शिक्षा देने के लिए, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि भगवान के बताए हुए रास्ते पर भी हम नहीं चलना चाहते, मन मर्जी करना चाहते हैं। अगर हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं फिर हमें मरना ही पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान नहीं चाहते कोई नरक में जाए, उन्होंने तो रास्ता बता दिया, शिक्षा दे दी। खैर मेरे प्यारे हरिभक्तों, आओ, दशरथ महाराज का देहांत हो गया, रात को समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो इधर भारत जी वहां नहीं है, भारत जी के कई देश में अपने ननसाल में गए हैं, हैं अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, सुमित्रा जी के दो पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण, कौशल्या राम, ककेई भरत, इन दोनों भाइयों की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी वहां गए हुए हैं। उनको रात को स्वप्न आया, देखो संकेत आ जाते हैं महान आत्माओं को, उनको स्वप्न रात को आया कि महाराज दशरथ की हालत बड़ी खराब हो चुकी है, महाराज दशरथ गधे पर बैठे हुए हैं, गधे के रथ पर बैठे हुए हैं, गधे पर बैठे हैं तो बड़े अपशकुन दिखाई दिए उनको, बड़ा विस्तार से उसका वर्णन है। तो रात को भरत जी उठ गए, उनके जो मित्र थे उनके साथी उन्होंने उनको कहा, उन्होंने उनको बहलाने की कोशिश की, लेकिन भरत जी का मन नहीं, तो लगा कि भाई मेरे हमारे पिता आज हमें से चारों में से कोई जाने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है, ऐसा संकेत आ गया, मतलब अपशकुन दिखाई दिए। इधर से जब सुबह हुई, दशरथ महाराज जो हैं वहां पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। रात को जब लोग ककई अपना इधर से कौशल्या आई तो उनको पता लगा। सुबह जब हुई तो राजाओं को भाट लोग जगाते हैं, सेवक सेविकाओं की कोई कमी नहीं होती राजाओं के पास। जब वो आए देखे तो दशरथ जी बेचारे मृत पड़े हैं, सब वो सेविकाएं चिल्ला पड़ी, सबर होने लग पड़ी, हाहाकार मच गया, महाराज ने प्राण त्याग दिए। कौशल्या माता आ गई भागती हुई, आ गई तो उधर से जब ककई को पता लगा, ककई को जब पता लगा, ककई बेचारी बड़ी बदनाम है, वैसे बहुत बदनाम है, लेकिन वह ककई नहीं होती तो रावण कैसे मरता। ककई बड़ी बदनाम है, कोई भी अपनी बेटी का नाम ककई नहीं रखता, रखता है कोई, रखता है कोई मुंबई में, रखता नहीं, कोई नहीं रखता ककई नाम, कोई नहीं पसंद करता। कौशल्या रखेंगे, सुमित्रा रखेंगे, लेकिन ककई कोई नहीं रखेगा। तो उसको पता लगा जब, तो उसने भी जो है ना नाटक शुरू कर दिया, वो भी रोने लग पड़ी, रोने लग पड़ी। तब तो कौशल्या ने बड़ी भत्सना की, कहते अभी तू खुश है ना, हैं महाराजा मर गए, तेरा पुत्र आएगा वो राज करेगा, बड़ी उन्होंने ऐसे शब्द कहे। कौशल्या माता दुखी हो गई। वर्णन आता है कि सुरभि माता का, सुरभि गाय का वर्णन आ रहा है। सुरभि गाय के दो पुत्र जो हैं वो बैल, वो बेचारे उनको अचेत पड़े हैं, और मां जो है सुरभि माता उनको जो है ना बड़ा उनसे परिश्रम करवाया गया। सुरभि माता के दो गाय सुरभि देवी पुत्रों से, तो मां जो है अपने बच्चों को अच्छे देखकर दुखी देखकर रो रही है, उनका आंसू जो है इंद्र के ऊपर जाके गिरे सुरभि माता के। तो वहां ये वर्णन आता है कि मां का अपने पुत्रों से बड़ा स्नेह होता है, और कौशल्या माता का कितना स्नेह है अपने पुत्र से, पिता ने तो प्राण ही छोड़ दिए, कौशल्या माता कितनी दुखी है। बड़ी भत्सना की, वैसे जो दिख रहा भत्सना करने की बात ही यह है कि ककई निमित्त बनी बीच में राम जी को वनवास देने के लिए, दशरथ जी मर गए, श्री छोड़ दिया, तो हाहाकार मच गया। अभी बिना राधा के राज्य जो है ना नहीं चल सकता, ऐसी रीति है, रिवाज है कि तुरंत राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। अगर राजा सिंहासन पर नहीं है तो क्या होगा कि गुंडे बदमाश आ जाएंगे, गुंडागर्दी करने लगेंगे, वो अपना गुंडे जो अपना बिजनेस करने लग पड़ेंगे, जिनकी दुर्बुद्धि है, जो भक्त नहीं है, वो गुंडे बदमाश बन जाते हैं, उसके फलस्वरूप वो नरक में जाते हैं बेचारे। लेकिन महाप्रभु ने तो गुंडे बदमाशों का भी जैसे जगाई मदाई का भी उद्धार किया। तो अभी सब मुनि वशिष्ठ जी और सब ऋषि मुनि ब्राह्मण सब इकट्ठे हो गए, जो सब सेवक जब राजा के पूजने भी हैं, वो राज अपना योद्धा का जो राजा उसकी सेवा करने वाले हैं, वो अभी बिना राजा के अपना राज नहीं चल सकता, तो पुत्र के बिना अंत्येष्टि नहीं हो सकती पिता की। अभी दो पुत्र तो चले गए वनवास में, भरत जी भी नहीं है, सब ने ये निर्णय लिया कि तुरंत जो है उनको बुलाया जाए, भरत जी को बुलाया जाए। इधर से संदेश लेकर के भेज दिया कि जाओ तुरंत भरत जी को कई देश से उनके ननसाल से बुला के ले आओ। उधर भरत जी वो बड़ा खराब सपना देखने के कारण वैसे ही दुखी थे, तो संदेश चलो आपको जल्दी बुलाया है, तो तुरंत भरत जी वहां से चल पड़े। जब भरत जी जब वापस आए तो वो उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा, उन्हें कोई पता नहीं कि पिता उनके गुजर चुके हैं, तो वो अपनी मां के पास गए। मां के पास गए और मां को प्रणाम किया, चरण छुए, मां मेरे पिता कहां है? तो अभी देखो ककई बड़ी हिम्मत करके वो सोच रही है, क्योंकि ककई एक कुसंग में दूषित हो गई। मंत्रा का रोल जो है ना कि बड़ा बुरा रोल है, अगर कोई किसी को बार बार कुछ कहता रहे ना है? तो उसका बुद्धि बदल जाती है। तो ककई की बुद्धि बदल गई मंत्रा के मंत्रणा से, उल्टी सीधी बातों से। कहती है कि ककई कहती है, बेटा तेरे पिता जो हैं उनका देहांत हो गया। यहां तो एकदम मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। भरत जी को उठाया ककई ने, ककई ने गोद में लिया, बेटा हिम्मत करो, होश करो, दुख सब पर आते हैं, दुख में आदमी घबराता नहीं, अभी शिक्षा दे रही है ककई। तो क्या होगा मेरे पिता को, क्यों उनका देहांत हुआ? तो बड़ी तरीके से बड़ी घुमा फिरा के ककई बात कर रही है। कहते बेटा तेरे पिता ने मुझे दो वर दिए थे, जब संग्राम में, युद्ध में, देवासुर संग्राम में मैंने उनकी मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, तब महाराजा ने कहा था कि देवी मैं तुम्हें दो वर देता हूं, जब तुम्हारी इच्छा होगी वो वर मांग लेना। तो मैंने वो दो वर मांगे, एक में बेटा तेरे को राज, मेरे को राज। भरत जी चौंक पड़े। दूसरे में राम को बनवा, जब ये कहा तो भरत जी बेचारे फिर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, फिर मूर्छित हो गए। अभी भरत जी को बड़ा क्रोध आ गया। कहते हैं ये परंपरा है, ये रिवाज है कि सबसे बड़ा भाई राज्य होता, राज करता है, और राम जो है वो सर्वगुण संपन्न है, वो उनको राज क्यों नहीं, मेरे लिए राज क्यों मांगा तूने? बेटा देखो, अगर राम राजा बनता तो मैंने कौशल्या के अधीन रहना था, अरे तुम राजा बनोगे तो कौशल्या मेरे अधीन रहेगी। गलत सोच है, राम जी तो बड़े महान थे। तो अपना ककई की बातों पर बहुत क्रोध आ गया और बड़ी प्रार्थना की, बड़ी प्रताड़ना की ककई की, कि तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, तूने इतना अन्याय किया, तू अपने पति को तूने मार दिया और मेरे भाई को, मेरा भाई जो निर्दोष सबसे प्यार करने वाला, उसको तूने वनवास में भेज दिया। वनवास में क्यों भेजा मेरे भाई को? तब ककई क्या दलील देती है, बेटा अगर वो यहीं रहता, लोग तो सब उसको चाहते हैं, तो तेरा राज्य ठीक तरह से स्थापित नहीं हो सकता था, इसलिए उनको वनवास भेजा ताकि तुम अच्छी तरह से अपना राज्य स्थापित कर सको। भरत जी को कोई भी बात ककई की अच्छी नहीं लगी और अभी भरत जी बड़े दुखी हो गए, विलाप करने लगे और ककई को बहुत कुछ उन्होंने कहा, इतना कुछ कहा, धिक्कार आ उसको कि मैं तेरा बेटा क्या क्यों बना, मुझे पता लगता कि तू मेरी ऐसी मां होगी तो तेरा दूध पी के मैं उगल देता, तेरा दूध ही नहीं पीता। अभी ककई ने सोचा था कि ये अच्छा सब कुछ होगा, पासा उल्टा पड़ गया और उनके जो सारे जो प्लानिंग थी सब फेल हो गई। अभी भरत जी निकल पड़े, घर से चल पड़े, ककई को छोड़ करके आए तो आगे से कौशल्या जी को पता लगा। कौशल्या जी कहती हैं, अभी तुम खुश हो ना, पिता तुम्हारे चले गए, राम जी वनवास में हैं, तुम निष्कंटक राज करो। तो भरत जी रोने लग पड़े। भरत जी माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े कि मां मैं निर्दोष हूं, मैंने ये जो जितना षड्यंत्र है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब मेरी मां का। और फिर उनको पता लगा कि मंथरा जो है उसने ककई को दूषित किया, मेरा इसमें कोई, तो एकदम कौशल्या माता समझ गई। जब देखो कोई निर्दोष को अगर कोई दोष लगाता है उसे बड़ा दुख होता है, वो दुखी होता है। भरत जी दुखी होकर नीचे गिर पड़े। तो कौशल्या माता ने उनको उठा करके अपनी गोद में उनका सर रख लिया। वो समझ गई कि ये भरत का कोई दोष नहीं, क्योंकि देखने में तो ऐसे लग रहा कि भरत की सारी चाल है, लेकिन नहीं। भरत जी कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं माता, मुझे क्षमा कर दो। तो अभी सब इकट्ठे हो गए, वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि जितने भी जो हैं उनके सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने भाई अभी तुम्हें राज्य के लिए चुना गया है, राम जी वनवास में चले गए हैं, तेरा राज्य अभिषेक होना चाहिए। तो भरत जी ने राज्य अभिषेक से इनकार कर दिया। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन देखो दूसरे मलेच्छ यवनों की संस्कृति क्या है। पुत्र ने पिता को बंदी बना दिया, जेल में बंद कर दिया और पुत्र राजा बन गया। ऐसा भी है, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था, और शाहजहां ने अपनी भारतीय संस्कृति की बड़ी सराहना की थी। ये वर्णन आता है, ये हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, उसको जेल में बंद कर दिया। लेकिन यहां पर राज मिल रहा है, लेकिन भाई नहीं लेना चाहता मेरा। यही है हमारी संस्कृति, यही संस्कृति हमें भगवान से मिला सकती है, है? जिसका प्रदर्शन स्वयं भगवान राम ने किया। हम सब इसके अनुयायी बनके ही अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अगर ये विदेशी आज ये जो धीमन क्रजी हो गए हैं, इससे हम लोग सुखी नहीं हो सकेंगे, हम लोग दुखी रहेंगे। पर अगर चैतन्य निताय और प्रभुपाद जी की कृपा से इनके चंद चिन्हों पर चलते हैं हम, तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी भरत जी जब दुखी हो गए, उन्होंने उनको जब अभिषेक, क्योंकि राजा के बिना तो राज्य नहीं चल सकता भाई, आपको भी अभी राजा का शरीर जो है ना वो तेल के कुंड में रख दिया भरत जी के आने तक, क्योंकि बिना पुत्र के अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती। लेकिन भरत जी ने जो है राज्य अभिषेक से इनकार कर दिया। उन्हें मुनि विशिष्ट को कहा कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं अभी वन जा करके वन से अपने भाई भगवान राम को वापस लाऊंगा, उनको राज सिंहासन पर स्थापित करूंगा, राम राजा है, मैं उनका सेवक बन के रहूंगा। ये हमारी संस्कृति है। यहां भरत जी महाराज से हमने सेवक बनना सीखना है, स्वामी बनना नहीं सीखना। सब स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनना चाहता। जो सच्चा सेवक होगा वही स्वामी बन सकता है। हम वैसे हम सब पहले स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक बनना नहीं चाहते। घोर नरक को प्राप्त होना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारा आवागमन नहीं छूट पाएगा। दशरथ महाराज का दाह संस्कार किया भरत जी ने, और उन्होंने तुरंत जो है वन का प्रस्थान कर दिया। बोला कि मैं राज नहीं करूंगा। भरत जी एक किस्म के राजा वही है, बोला मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और बड़ा वर्णन आता है, बड़ी 60,000 हाथी, कितने घोड़े, कितनी सेना लेकर के भरत जी चल पड़े अपने भाई भगवान राम को वापस लाने के लिए। बोलो भरत जी महाराज की। उनको जब भरत जी जा रहे हैं, अभी महाराज का दाह संस्कार कर दिया भरत जी ने, अग्नि दाह दिया, और अभी दूसरे दिन भरत जी जो हैं उन्होंने सुमंत्र को कहा कि रथ ले आए, और बड़ी विशाल सेना भरत जी के नेतृत्व में, उस विशाल दल में 60,000 रथ, सेना के 60,000 रथ थे, जिनके सारथी राम के पूर्ण शरणागत थे। सारथी जब राम जी के शरणागत थे, 1,00,000 घुड़सवार थे, एवं 9,000 हाथी जो कमल पुष्पों के समान सुसज्जित थे। कौशल्या, सुमित्रा तथा ककेई भी अपने अपने रथ में चढ़कर राम को वन से लौटा लाने की आशा में चल पड़े। कि राम जी को बंसे लुटाएंगे, सब चल पड़े। अन्य उनके व्यक्ति भी राम को देखने की आशा में प्रसन्न चित्त होकर भरत के साथ चल दिए। बड़े अयोध्या के बहुत लोग अन्य भी चल पड़े, भाई राम जी के हमें दर्शन होंगे, राम जी के हम दर्शन करेंगे। अयोध्या के निवासी स्वर्ग लोक के निवासियों के सदृश प्रतीत हो रहे थे। जैसे स्वर्ग लोक के निवासी लगते हैं, ऐसे ही अयोध्यावासी लग रहे थे। बोलो अयोध्या धाम की, बोलो अयोध्या वासियों की, बोलो ब्रजवासियों की, बोलो वृंदावन धाम की
जय।
उन्होंने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, सुगंधित पुष्पों की मालाएं धारण की थी एवं शरीर पर चंदन का लेप लगाया था। रथ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दिव्य विमान हो एवं हाथी इस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे मानो किसी चमकती धूप वाले दिन में बादल वायु से भगाए जा रहे हों। चल पड़े तो आगे जाकर के क्या हुआ, अभी जब राम जी भी जब निकले थे ना, आगे जाके उनका मिलन हुआ किसे, निषाद राज गुरु जी से। गुरु ने देखा इतनी सेना, इतने लोग, उनको शंका हो गई क्योंकि राम जी ने सारा बताया था मैं पिता के, तो भाई भरत अभी राजा होंगे, तो उन्हें शंका हो गई कि ये वन में आकर के राम जी को मारने के लिए भरत यहां आ गया। तो पर बुद्धिमान व्यक्ति, उसने अपने आदमी तैयार कर दिया, अपनी फौज को, अपनी सेना को बोल दिया कि हम इतना तो कर सकते हैं, इनको गंगा के उस पार नहीं जाने देंगे अगर इनकी ये भावना होगी। तो निषाद राज गुहु जो हैं स्वयं आगे आए, आगे आकर के उन्होंने पूछा भरत आप कहां जा रहे हैं। तो निषाद राज जी को शंका थी, उन्होंने पूछा भाई आपकी क्या भावना है, किस लिए जा रहे हैं। तभी भरत जी रोने लग पड़े, उनके मन भी आप भी मेरे पर शंका कर रहे हो निषाद राज, आप मेरे भ्राता श्री राम के मित्र हो, मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है, मैं इसलिए जा रहा हूं राम जी को वापस लौटाने के लिए, राज सिंहासन पर उनको स्थापित करने के लिए। फिर निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए, इनकी भावना बड़ी अच्छी है, मैं उनको वापस लाने के लिए जा रहा हूं। और बड़े विनम्र भाव, तो फिर निषाद राज जी के पास जब पहुंचे तो उधर वो समझ गए, उन्हें सबको बता दिया कि नहीं ये भरत जी जो है बड़ा अच्छा भाव इनका है। और फिर बताया मेरे, उन्होंने बताया कि रात को राम लक्ष्मण सीता यहां रुके थे, और जगह बताई जहां रात को सीता राम सोए थे। तो भरत जी ने वहां प्रणाम किया, बोले कैसे, देखे वलकल वस्त्र पहन रखे थे, वहीं पर भरत जी ने भी वलकल वस्त्र पहन लिए और जटाएं बना ली सर में, कहते मेरे भाई जो हैं, मेरे भगवान राम जो हैं उन्होंने ऐसा भेष बनाया है, मेरे कारण ऐसा हुआ, उनको इतना कष्ट हुआ, उन्होंने भी अपना वैसा ही भेष बना लिया, भरत जी ने वैसा ही भेष बना लिया। और रात को घूज ने बताया कि सारी रात मैं जागता रहा, लक्ष्मण जी भी जागते रहे, हम पैरा देते रहे, राम जी को मैंने बड़ा समझाया अब रुको, कहते नहीं वो मेरे नगरी में भी नहीं आए, यहीं वन में रहे। तो गुरु जी ने उनको गंगा पार करवाई और भरत जी जो हैं वो आगे चल पड़े। भरत जी गुरु से मिलने के बाद उनका भरद्वाज मुनि से मिलन हुआ, भरद्वाज मुनि ने उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। तो भरद्वाज मुनि ने पूछा उनको अब किस लक्ष्य से जा रहे हैं, तुमने बताया कि मैं राम को वापस लौटाने, उन्होंने भी थोड़ी शंका की, लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं मुझे सारा पता था, लेकिन मैं पूछ रहा था, जानना चाहता था सच्चाई, पर मुझे पहले ही पता था आपकी भावना, भरत आप धन्य हो, आपकी भावना बड़ी उत्तम है। तो भरत जी ने जो है सारी बात बताई, उन्होंने ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया और उनको बताया, उन्होंने पूछा मेरे भाई कहां, तो उन्होंने बोला कि राम लक्ष्मण सीता जो हैं वो चित्रकूट पर वास कर रहे हैं। चित्रकूट पर उनका निवास है और रास्ता बताया उनको। अभी भरत जी इतनी सेना के साथ जो वर्णन हुआ, 9000 हाथी हैं, 1,00,000 घुड़सवार हैं, 60,000 रथ हैं और लोग हैं, दुनिया जैसे भी अटैक ही करने जा रहे होंगे, वो सब भावना से जा रहे हैं। अटैक करने कोई नहीं जा रहा था, आक्रमण करने कोई नहीं जा रहा था। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, क्या हुआ कि अभी जब इतने लोग चल रहे हैं वन से, तो वन्य प्राणी इधर उधर भागने लग पड़े और चित्रकूट का रास्ता बता दिया भरद्वाज जी ने कि चित्रकूट पर वास है राम जी का, वहां कुटिया में भगवान रहते हैं। तो वन्य प्राणी इधर उधर भागने लगे और उधर से राम जी बैठे हुए हैं आश्रम में अपनी कुटिया में। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देखो क्या कारण है, ये वन्य प्राणी घबरा कर इधर उधर जा रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो लक्ष्मण जी एक वृक्ष पर चढ़ गए, उन्हें दूर से देखा, कहते कि बहुत सेना आ रही है, हजारों रथ हैं, घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, जनता है, लोग हैं, हाथी हैं। कहते देखो ये ध्वजा किसकी है, राम जी पूछते हैं लक्ष्मण जी को। देखा, कहते ये ध्वजा भरत की है, ये हमारी सूर्यवंशियों की ध्वजा है। तो भरत यहां आ रहा है हमें मारने के लिए ताकि वो निष्कंटक राज कर सके। लेकिन राम जी ने क्या कहा, राम जी कहते हैं लक्ष्मण हो सकता है वो हमें मिलने के लिए भी आ रहा हो, हमें ले जाने के लिए भी आ रहा हो, भगवान तो घटघट के बाद ही नरलीला कर रहे हैं। कहते आने दो इसको, आप अपना धनुष्मान संभालो, तैयार हो जाओ, आज मैं भरत को यमपुरी पहुंचा दूंगा। उनको क्रोध क्रोध आ गया, उनको लक्ष्मण जी को वैसे ही क्रोध बहुत आता है, बोलो लक्ष्मण भगवान की। लेकिन राम जी ने शांत किया, देखो लक्ष्मण ऐसा नहीं है, उसको आने तो दो पहले तुम। अच्छा तुम ऐसी है, तुम अगर राज्य चाहते हो तो मैं भरत को कहूंगा वो राज्य तेरे को दे दे। तो भरत जी को, लक्ष्मण जी को बड़ी शर्म आई कि भगवान क्या कह रहे हैं। इतने तो भरत जी आगे पैदल चल रहे हैं बेचारे भरत जी आगे। जब तो भरत जी ने राम जी को देखा, भागते उनके चरणों में गिर गए, चरणों में लौट गए और रोने लगे, विलाप कर रहे हैं, मूर्छित हो गए भरत जी। राम जी ने उठा करके उनको अपने गले से लगाया, बोलो राम भरत मिलन की जय, बोलो राम भरत भगवान की जय। उनको गले से लगाया, उनका मिलन हुआ और राम जी पूछते हमारे पिताजी कैसे हैं, पिताजी स्वस्थ तो हैं, हाल चाल पूछा। बहुत सारी बातें राम जी ने कही, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण सारी बातों का वर्णन नहीं हो सकता, समय कल है कम है, कल कथा सुबह है ना, कल सुबह है कथा 8:30 से लेकर 8:30 से 12 तक, कल सुबह कथा है वो। अभी ये है अयोध्यापुरी, कल हम वृंदावन हाल में जाएंगे, कल वृंदावन चले जाएंगे हम, तो कल की कथा वृंदावन में होगी, यानी कि वृंदावन हाल, सबको पता है नहीं, कल की कथा सुबह होगी 8:30 से लेकर। अभिषेक कितने बजे होगा भगवान का, है तो कथा तो फिर थोड़ी पहले समाप्त करनी पड़ेगी ना। इधर हमारे असीम जी कह रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, कहते 11 बजे समाप्त करनी है, 11 बजे असीम जी, 11 बजे हमारे ब्रिज प्रेम जी, जिनका ब्रिज से बड़ा प्रेम है, हमारे असीम जी जिनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, असीम कृष्ण, वो कहते हैं 12:15 नहीं, वो कहते हैं 11:15, ब्रिज प्रेम जी कहते हैं 12:15। किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने, हाँ नहीं, उन्होंने कहा 11:15,
آپ کہتے ہیں پونے بارہ
بھیڑ کے اوپر
ایک کہتے ہیں ابھی ایکچولی برج پریم جی بڑا مطلب برج پریم ہے نا ان کا بڑا برج پریم جی کہتے ہیں کہ بھیڑ کے اوپر جتنی بھیڑ ہوگی اتنا ستسنگ ہوگا یہی ہے نا کہتے کل بتاؤں گا تو آپ اتنا تو بتا دیتے ہیں صبح آٹھ ساڑھے آٹھ کتھا ہونی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کرپیا کر کے سمے پہ پہنچیے دیر سے نہیں اور کل رام جی کی کرپا سے سیتا ماتا کی کرپا سے بہت پرسنگ ہیں بہت کچھ ہے تو ہم برج پریم جی کا اور اسیم جی کا دھنیواد کرتے ہیں ہرے کرشن تو میرے پیارے ہری بھکتوں ماتاؤں ابھی بھرت جی بڑے دکھی ہیں رام جی پوچھتے ہیں کیا بات تم راج ٹھیک طرح سے کر رہے ہو کیا بڑا بڑا ورنن آ رہا ہے لمبا چوڑا بڑا سندر ورنن ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کیا کرے کیا جائے سارا ورنن پڑھنا چاہیے سنانا چاہیے آپ کو تو ان کے پتا جی کا حال پوچھا تو تب بھرت جی کو کہنا پتا جی جو ہیں انہوں نے شریر کا تیاگ کر دیا رام جی مورچھت ہو کر گئے رام جی بھی مورچھت ہو گئے رام جی بھی دکھی ہو گئے پتا کا ندن سن کر کے رام جی کے بڑے بھکت تھے دشرتھ تبھی تو ان کے پتر روپ میں بھگوان آئے تھے انہوں نے پھر جیسے سنا تو انہوں نے ترنت اس سمے جلانجلی جل دیا اپنے پتا جی کو جل ارپن کیا جل دینا ہمارے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے گروڑ پران میں ورنن ہے جب کوئی پتا گزر جاتا تو پتر ایک سال تک جل دیتا ہے اپنا پیپل کا ورکش جو ہے اس میں ایک سال تک جل ڈالا جاتا ہے یہ سارے نیم ابھی بھی گاؤں میں ہوتے ہیں لیکن بڑے شہروں میں بڑے شہر بڑے کام اور بڑے نرک سب نے نرک بھرنے ہیں بڑے شہروں میں بڑے کام بڑے نرک بالی ووڈ میں بڑا نرک تو دیکھو رام جی نے شکشا دے رہے ہیں بھگوان ترنت جا کے جلانجلی دی اور وارتالاپ ہوئی ابھی دیکھو رام بھگوان بھرت جی کو سمجھاتے ہیں رام جی کہتے ہیں کہ بھرت کبھی تم ککی کو اس کی برتسنا نہیں کرنا اپنی ماتا کا پورا سمان کرنا دیکھو رام جی یہ شکشا دے رہے ہیں ہون ہار ایسی ہے تم اپنی تینوں ماتوں کا سمان کرنا اور تم بڑی اچھی طرح سے پرجا کا پالن کرنا اچھی طرح سے راج کرنا لیکن بھرت جی کہتے ہیں پربھو راج تو آپ کا ہے میں راج نہیں کروں گا میں تو آپ کا سیوک ہوں اور بھرت جی نے یہ کہا کہ میں شپت لے لی انہوں نے کہ میں یہیں بیٹھ کے نا بیٹھ کے نرجل رہوں گا اگر جب تک آپ چلیں گے نہیں میرے ساتھ لیکن رام جی نے سمجھایا کہ دیکھو بھرت پتا جی کی آگیا ہے پتا جی کی آگیا پالن کرنا ہم رگوونشیوں کا دھرم ہے کہا ہے نا وہ رگوکل ریت سدا چلی آئی پران جائیں پر بچن نہ جائی ہمارے کل کی ریت یہ چلی آئی بچن جائیں پر پران نہ جائے ہم لوگ گپے مارتے ہیں نا ہاں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کیا کیا دانت نکال دیتے گپے مارتے ہیں لیکن رگوونشی اگر کسی کو بچن دیتے تو پورا کرتے ہیں یہ سیکھنا ہی یہاں پر کہ دیکھو بھرت ہمارے پتا جی نے تمہاری ماتا کو دو بھر دیے تھے اس میں ایک میں تیری ماتا نے میرے کو بنواس مانگا تمہارے راج ہمیں پتا کے وچنوں کو پورا کرنا چاہیے تمہیں بھی پتا کی آگیا کا پالن کرنا ہے بہت بڑا وارتالاپ ہوا رام اور بھرت جی کا لیکن بھرت جی جو ہیں رو رہے ہیں کہتے نہیں آپ راجا ہیں میں آپ کا سیوک ہوں آخر رام جی کی وجے ہوئی ادھر پھر رشی آ گئے رشی لوگوں نے آ کے سمجھایا رشی لوگوں نے سمجھایا کہ ایک جاوالی تھے وہ ناستک ٹائپ تھے انہوں نے کچھ الٹی پٹی وہ پڑھانے لگے رام جی کو کہنے لگے کہ آپ آؤ رج کا بھوگ کرو آنند لو تو انہوں نے بولا کہ آؤ کیا یہ دھرم کے نام پر اب ادھرم کی باتیں کر رہے ہیں بڑی برسنا کی بڑی ڈانٹ لگائی بھگوان رام نے اس جاوالی رشی کو कहने मैं इसलिए कह रहा था आप चल पड़े। कहते कैसे चल पड़े, हमने पिताजी को जो वचन दिया वो वचन पूरा करना है, कैसे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ऋषियों ने समझाया, आखिर ऋषियों की बात सुन करके भरत जी ने कहा अच्छा तो फिर मैं राज्य जो है आप ही करेंगे, मैं आपका सेवक बन के वहां रहूंगा और मैं शहर में नहीं रहूंगा, आप वन में रह रहे हैं मैं भी वन में रहूंगा। तो भरत जी जो हैं वो शहर में अयोध्या में नहीं रहे थे, उन्होंने शहर के बाहर कुटिया बनाई थी, क्या नाम था उसका, नंदीग्राम। नंदीग्राम में भरत जी ने वैसी जटा बना ली जैसे राम जी जिस भेष में थे, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, जमीन पर सोए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप अगर इतने दृढ़ हैं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, मैं आप की चरण पादुकाएं मुझे दे दो, आपके चरण पादुकाओं को मैं राज सिंहासन पर स्थापित करके आपकी प्रेरणा से, आपकी चरण पादुकाओं की प्रेरणा से अयोध्या का राज करूंगा। बड़ा सुंदर भाव भरत जी का, बोलो भरत जी महाराज की। तो फिर उनको खुड़ाऊं दी, तो भरत जी ने खुड़ाऊं अपने सर पर रख ली, सर पर रख करके भरत जी प्रणाम करके अपने बड़े भाई को मिल करके वापस अयोध्या को आ गए, अयोध्या को वापस चल पड़े। अयोध्या वापस आने पर भरत जी ने जो है पादुकों को, राम जी की पादुकाएं जो थीं, उनको राज सिंहासन पर स्थापित किया और नंदीग्राम में जाकर के श्री राम की चरण पादुकाएं जो थीं उन पर आश्रित रहकर उनके आधार पर उन्होंने अयोध्या का राज्य चलाया। भरत जी ने यह भी बात कही राम जी को कि प्रभु मैं 14 वर्ष तक राज आपकी अनुपस्थिति में आपका समझकर चलाऊंगा, 14 वर्ष अगर आप एक दिन भी नहीं आए ना तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, प्राणांत कर दूंगा। ये भरत और राम जी का इतना प्रेम था। बोलो राम भरत प्रेम की। तो अभी राम जी वहां से चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम में आ गए जिनकी धर्मपत्नी अनसुईया है। बोलो अत्रि मुनि जी महाराज की। बोलो अनसुईया माता की। जब वो वहां आ गए तो अनसुईया माता जो हैं उन्होंने सीता माता को बड़ी सुंदर शिक्षा दी और अत्रि मुनि ने राम जी का बड़ा स्वागत किया। एक बात अनसुईया माता ने कही सीता माता को, बहुत सारी बातें कही, एक बात यह भी कही उन्होंने कि देखो देवी, स्त्री का जो शरीर है वो जन्म से अपवित्र है लेकिन वो पति की सेवा करके परम पवित्र हो सकती है। तो स्त्री को, ये हमारी संस्कृति है, स्त्री पतिव्रता होती है लेकिन कलियुग का प्रभाव रुक सकता है अगर हम हरि नाम की शरण लें, चैतन्य निताय की शरण लें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, तो ये कलियुग का प्रभाव रुक सकता है। ऐसी बात नहीं है, हरि नाम में बड़ी शक्ति है, अपार शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे ना काला एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शमी हजानी नानु रागा। हे भगवान, आपने नामों में अप्राकृत शक्तियां भर के रखी हैं और इन नामों को जपने के लिए कोई कठोर या सख्त नियम भी नहीं है, किसी अवस्था में कहीं भी कोई इनको जप सकता है लेकिन मैं इतना भाग्यहीन हूं कि मेरा नाम से प्रेम ही नहीं हुआ। हम नाम जपने में हमारी रुचि नहीं है,
क्योंकि हमारे मन माया जाल में फंस गए हैं, विषय विकारों में फंस गए हैं, भोग विलास में फंस गए हैं, स्त्री पुत्र में फंस गए हैं। जब जाना पड़ेगा ना, तैयारी नहीं होगी तो बड़ा कष्ट होगा। तो अनसुईया माता सीता जी को कहती हैं, देखो देवी, जैसा तूने किया ना ऐसा ही करना चाहिए स्त्री को। प्रायः क्या होता है, स्त्री पति के साथ कब रहती है? अगर उसके पास धन संपत्ति बहुत है तो पति का साथ देगी, अगर पति धनहीन हो गया तो पत्नी उसको छोड़ देगी। आपको कल बताई थी ना बात, हमने कैनेडी की और राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता ने दूसरी शादी कर ली। तो लेकिन तुमने दुख में भी जो पति का साथ दिया, ये बहुत सुंदर बात है। अनसुईया ने ये बात कही सीता माता को। बोलो अनसुईया माता की। तो बड़ी सुंदर शिक्षा है और उनको बड़े सुंदर वस्त्र दिए। माता अनसुईया ने एक फूल माला दी सीता जी को, कभी नहीं मुरझाने वाली। अनसुईया कैसी स्त्री थी, सती नारियों में बड़ा ऊंचा नाम है उनका। बोलो अनसुईया माता की। अनसुईया माता ने अपने पति प्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने छोटे छोटे बालक बना दिया था। दोनों बालक बन गए थे, दोनों को बालक। देखो स्त्री में इतनी शक्ति, पति प्रत धर्म में इतनी शक्ति है, स्त्री जो है एक सती नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बालक बना सकती है। इसलिए सब स्त्रियों को सती बनना चाहिए। सती करते अपने पति की आज्ञा में रहना, पति की आज्ञाओं का पालन करना, घर का अच्छी तरह से ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करना। धर्म पत्नी का वैसा अर्थ है पति को धर्म की ओर ले जाना। धर्म पत्नी का अर्थ है पति को धर्म की ओर ले जाना। पुरुष में संग दोष आ जाता है, पुरुष बाहर जाता है लोगों से मिलता है, लेकिन स्त्री का काम उसको धर्म की ओर ले जाना। लेकिन कलयुग में सब उल्टा है। पर अगर जैसे वर्णन आता है ना कि ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था, क्यों? उन्होंने अपनी पत्नियों को, याज्ञिक ब्राह्मण थे वो, यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे, तो इतनी देर में भगवान के सखा आए कि हमारे भगवान को भूख लगी है, तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने मना कर दिया हम यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ये पता नहीं मूर्खों को कि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको इतनी समझ नहीं थी। तो सखा निराश हुए, उन्होंने आकर बताया ऐसा नहीं कुछ भी, कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ, भगवान घटघट के पास ही जानते हैं ना, मौका सबको देते हैं। बोले कृष्ण बलराम, आज कृष्ण बलराम। वो ब्राह्मण पत्नियों ने बड़े सुंदर पकवान बनाना शुरू कर दिए। पत्नी कहती है क्या कर रही हो तुम? हम कृष्ण बलराम के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं हम यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ करो या कुछ और करो, यज्ञ करो या कुछ और करो, हम तो कृष्ण बलराम के लिए पतियों का तिरस्कार कर दिया, मंगलकारी हो। वैसे कृष्ण के लिए तो किसी का भी त्याग किया जा सकता है, जैसे राम जी ने ही कहा था ना, वो उसने अपना वर्णन आता कि या के प्रिय न राम वदेही, सो छाड़िए कोटि बैर सम यद्यपि परम सनेही। ये तुलसीदास जी ने पद लिखे थे मीरा जी को, तो मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तो तब तुलसीदास ने लिखा था जिसका राम से प्रेम नहीं है, वो राम के भक्त थे, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। भक्त कोई नहीं है तो उसका त्याग नहीं, कभी कलयुग में वर्णन है। जैसे देखो भरत जी ने मां ककेई को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया, ब्रज की ब्राह्मण पत्नी अपने पतियों को छोड़ दिया, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग कर दिया। पत्नी का भी हो सकता है, पति का भी, मां का भी, बाप का भी, भाई का भी, ये बड़े रिश्ते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य असल में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम यानी कि कृष्ण की प्राप्ति, गौलोक धाम में जाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और जो कुछ भी हमने समझ रखा है हमारे मलिन मन की उपज है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, अभी सुंदर शिक्षा प्राप्त करके अनसुईया माता से सीता माता राम जी को पहचानते हैं त्रिमुनि कि ये तो स्वयं भगवान आए हैं, सीता जी स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार हैं, धरती का भार कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो अभी सती अनसुईया और अत्र ऋषि से अनुमति लेकर के भगवान दंडकारण्य की ओर प्रस्थान उन्होंने किया, दंडकारण्य की ओर चल पड़े भगवान। और दंडकारण्य वन में श्री राम लक्ष्मण और सीता जब वो जा रहे थे तो एक विराट नाम का राक्षस उसने उन पर आक्रमण कर दिया, सीता को उठा लिया, उसने सीता माता को उठा लिया, विराट नाम का राक्षस। उसने जब सीता को उठा लिया कहते तुम लोग कौन हो, जल्दी से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे मेरे हाथों से। और राक्षस कहता है राम लक्ष्मण को, और इसको छोड़ दो मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा सीता जी के लिए। अभी आप देखो कि राक्षस वृत्ति यही है, कोई सुंदर स्त्री मिली तो पत्नी बनाना चाहते हैं, मां कोई नहीं बनाना चाहता, राक्षसों की गति। लेकिन शिक्षा क्या है, हर स्त्री को मां की नजर से देखो। रामायण में ही वर्णन आता है ना कि सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। स्त्री सीता का स्वरूप है, पुरुष राम का स्वरूप है, सबका सम्मान करो। पर जब राक्षस वृत्ति आ जाती है, जब राक्षस वृत्ति बढ़ती जा रही है, राक्षस वैसे सिंगों वाले भी होते थे पर बिना सिंगों के भी राक्षस होते हैं, इन्हीं सभी राक्षसों के सरों पर सिंह होते हैं। अच्छा जो शराब पीता है मांस खाता है तो उसको फिर दूसरी की स्त्री पर बुरी नजर रखता है वो, ये राक्षस वृत्ति है। आज बिना सिंगों वाले राक्षस बहुत बढ़ चुके हैं। तो ये राक्षस, इनका जो राक्षसी स्वभाव है ये भगवान चैतन्य की कृपा से, भगवान नित्यानंद की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, महामंत्र का सहारा लेकर बड़े बड़े, क्योंकि जगाई मदाई भी राक्षस थे, वो भी उनका राक्षस स्वभाव बदल गया और वैष्णव बन गए, दोनों परम वैष्णव बन गए। तो ये जो राक्षस है इसने आक्रमण किया, सीता जी को पकड़ लिया। तो अभी उनको हाथ दोनों चले जाओ नहीं तो मार दूंगा तुम दोनों को, दोनों को राम लक्ष्मण जी को ही पकड़ लिया इसने, इस राक्षस ने, बड़ा विशाल राक्षस था। अब इस राक्षस की एक भुजा लक्ष्मण जी ने काट दी और दूसरी भुजा राम जी ने काट दी, राक्षस की दुर्गति हो गई और उसको जिंदा ही जो है ना गाड़ दिया पृथ्वी में। ये जो राक्षस था विराट नाम का, ये पूर्व जन्म में एक तुम्बरू नाम का गंधर्व था और जिसको कुबेर ने श्राप दे दिया था राक्षस बनने का, इसलिए जो तुम्बरू नाम का जो गंधर्व है ये राक्षस। और फिर मैं तेरा उद्धार राम और लक्ष्मण ही करेंगे। अभी राम लक्ष्मण जी ने दोनों का वध कर दिया, इसका राक्षस का वध, दोनों ने मिलकर के इस राक्षस को मार दिया, जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। फिर इसको जो अपना शरीर प्राप्त हो गया और असली रूप में ये राक्षस जो शरीर छोड़ने के बाद तुम्बरू नाम का गंधर्व पुनः उसको अपना शरीर मिला। बोलो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की। तो फिर उसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि द्वारा श्री राम जी को अगस्त ऋषि के आश्रम तक ले जाते हुए बातापी और इलवल राक्षस के अगस्त मुनि द्वारा संहार का वर्णन। अभी राम जी आगे बढ़ रहे हैं तो तीक्ष्ण मुनि जो हैं उनको अगस्त मुनि के आश्रम में ले जा रहे हैं। ये दो राक्षस हुए, एक बातापी दूसरा इलवल। ये बातापी क्या करता था, ब्राह्मण भेष बना करके ब्राह्मणों के पास जाता था, ब्राह्मणों को बुला के ले आता था और अपने भाई को ये भेड़ बना देता, भेड़ बकरी कुछ बना देता था, उसको फिर मार करके अंदर उनको सारे ब्राह्मणों को खिला देना और बाद में फिर इसने अपने भाई को बुलाना, भाई आओ, तो पेट से वो जो अंदर गया होगा धोखे से वो ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके वो दूसरा भाई जो है इलवल बाहर आ जाता था, ऐसे ब्राह्मणों का वध होता था। ऐसे इसने कितने ब्राह्मणों का इन दोनों भाइयों ने बातापी और इलवल ने वध कर दिया। तो अगस्त मुनि जो है ना, एक दिन अगस्त मुनि को भी जो है पकड़ लिया। अगस्त मुनि ऐसा किया कि इसने जो अगस्त मुनि को भी अपने भाई का भाई जो एक भेड़ के रूप में आया था मांस खिला दिया और आवाज लगाई इलवल ने, भाई इलवल ने बातापी ने, इलवल बाहर आओ। अगस्त मुनि कहते हैं मैंने उसको हजम कर दिया, बाहर क्या आएगा, मार दिया वो बाहर नहीं आएगा। और बातापी को अगस्त मुनि ने, अगस्त मुनि में बड़ी शक्ति थी, निधि से पहले कई ब्राह्मणों का वध ये राक्षस कर चुके थे। तो अगस्त मुनि ने तो वो कथा सुतीक्ष्ण मुनि जी जो हैं वो इनको राम जी को सुना रहे हैं अगस्त मुनि के आश्रम तक ले जाते हुए। तो अगस्त जी के जब पहुंचे, पास पहुंचे भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम
राधे श्याम सीताराम,
राधे श्याम सीताराम,
राधे श्याम सीताराम,
राधे श्याम सीताराम,
राम लक्ष्मण जानकी,
बोलो हनुमान की,
राम लक्ष्मण जानकी,
बोलो हनुमान की,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
अगस्त मुनि जी महाराज की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। अगस्त मुनि जी ने बड़ा स्वागत किया सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास ही रहो आप। तो नहीं, राम भगवान कहते हैं नहीं मुनिवर, हमें हमें कोई ऐसा स्थान चाहिए यहां पर शांति से हम रह सकें। तो फिर अगस्त मुनि जी ने उनको पंचवटी बताई। पंचवटी आपकी कहां पर आई है, महाराष्ट्र। बोलो पंचवटी धाम की। तो राम जी ने पंचवटी में निवास किया हुआ है। तो पंचपटी में जाकर के पंचपटी की ओर जाने की सलाह अगस्त मुनि जी ने सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को दी। अब जब पंचपटी की ओर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जा रहे हैं तो मार्ग में पंचपटी पहुंचने नहीं पहले उनकी भेंट हुई किससे,
किससे
कुछ बोला, मैंने क्या बोला है, वो कहते बताओ, कहते पता नहीं उसको कुछ बोला, बोला बताओ महाराज को बताओ, कहते पता ही नहीं किसी ने बोल दिया था जटायु जी से भेंट हुई। बोलो जटायु जी महाराज की। अरे राम जी सोचे कि जटायु को राक्षस है, राक्षस ने जटायु को भेष बनाया। तो जटायु ने बताया कि बेटा मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, और तुम यहां पंचवटी में निवास करो, जटायु जी महाराज कहते हैं। तो कल की जो कथा है वो 8:30 से लेकर 12:45 तक, कल की कथा जो है वो वृंदावन में होगी। कहाँ होगी? आज आप अयोध्या में हैं, कल आपको वृंदावन का आनंद, यानी कि वृंदावन हाल, ठीक है ना? ये कौन सा हाल अयोध्या?
ये मंडप
मंडप। खैर, हमने इसको अयोध्या बना दिया, राम कथा भी तो अयोध्या बन गया ना,
यहाँ पे शादी होती
है। अच्छा अच्छा, तो कल आपने कृपा करके समय पे आना है, 8:30 से 12:45 तक कथा होगी। अभी आप लोग जो पीछे जो उठ रहे हैं, कृपया शांति से बैठो, ठीक समय पे हम कथा की समाप्ति कर देंगे, समापन हो जाएगा, तो पीछे भाई लोग खड़े हैं बैठ जाएं, 5-10 मिनट और बैठे। तो जटायु जी ने जब कहा तो अभी देखो, एक गीतराज जटायु, एक ऐसे शरीर में होने पर भी वो बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि हे राम, आप यहां वास करो पंचवटी में, आप यहां रहो, जब आप वन में कहीं जाओगे पीछे से मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। कितना दिव्य भाव है जटायु जी महाराज का। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए जटायु से मिलकर के, और जटायु जी बड़े विशाल काय थे, गीतराज, बहुत बड़ा शरीर था उनका। तो गोदावरी वही है ना पंचवटी में, गोदावरी तट पर आप यहां रहो, सुंदर कुटिया बना करके, और मैं ध्यान रखूंगा आपका बड़ा। देखो पक्षी शरीर में भी कितना दिव्य भाव। अभी जब पंचवटी में, अभी मैं सोच रहा हूं ये महाराष्ट्र में इतनी गड़बड़ क्या है, गड़बड़ी, ये बॉलीवुड वालों ने बड़ी गड़बड़ कर रखी है, पता क्यों इतनी गड़बड़ है यहां पर? शूपनखा यहीं की थी, उसी पंचवटी में शूपनखा की भेंट हुई। किससे? शूपनखा ने देखा बड़े सुंदर राजकुमार हैं दोनों भाई, राम और लक्ष्मण। तो शूपनखा, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं ना, बड़े सुंदर भेष बना के आ गई। तो देख, लेकिन वासनाएं भरी पड़ी है ना, भारतीय नारी कभी भी वासनाएं व्यक्त नहीं करेगी, लेकिन जो विदेशियात घुसने से है और ये बॉलीवुड का प्रदर्शन देखने से मेरा मन डोले तेरा तन डोले, अभी भारतीय नारी भी बेशर्म होती जा रही है, नरक में जाने की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं, बेशर्मी का प्रदर्शन मत करो, नरक में जाना पड़ेगा, पर कोई नहीं निकाल सकता। तो ये आ गई शूपनखा पंचवटी में राम जी के पास, है राम तो अति सुंदर भगवान है, वो कहती है मैं बस मैं यहां रहती हूं, आप मेरे साथ विवाह कर लो। देखो अपनी वासनाएं व्यक्त कर रही है ना। राम जी कहते हैं देखो ऐसा है सुंदरी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है, तुम मेरा भाई अकेला है, उसको पूछो जरा जाकर। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी, देखो वो तो तुम्हारा भाई काला कलोटा भैंस का सोटा, तुम बड़े सुंदर हो, हम दोनों शादी करेंगे और यहां वन में विहार करेंगे, आनंद लेंगे। ये सब राक्षस वृत्ति क्या है? भोग विलास। गीता में वर्णन आता है भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम वया विषायात्मिका बुद्धि समादौन अवदीयते। जिनके मनों में भोग की कामनाएं है ना, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। भक्ति का दृढ़ निश्चय जो चाहते हैं, मैं भोगों को भोगूं, सुंदर स्त्री का संग करूं, बड़ा घर हो, कार हो, बंगला हो, और जल्दी से नरक में जाकर सड़ूं वहां पर, मैं ये चीजें नरक में ले जाएंगी। भोग की जिसके मन में कामना है, भक्ति का दृढ़ निश्चय उसके मन में नहीं होगा। याद रखो, भक्ति का दृढ़ निश्चय लाने के लिए भोग विलास की कामना को त्यागना करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और आज हमारी सरकार की ऐसी मेहरबानी हो गई, वो जो समलिंगिक समलिंगिक भारत में वो गंदगी शुरू हो गई। अमेरिका में तो हम देखते थे ये जो समलिंगिक है ना होमोसेक्सुअल लोग वो भी प्रदर्शन निकालते हैं वहां है, क्या क्या ये सब यमदूत जाते हैं नहीं जाते, क्या शक्लें उनकी, वो लाख लाख दो दो लाख बड़ी संख्या विदेशों में, यहां भी निकल आए, सरकार ने उनको मान्यता भी दे दी, पहले सजा थी। क्या कलयुग का प्रभाव। लेकिन चैतन्य निताय की कृपा से, राम जी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से, सीता माता राधा माता की कृपा से इस प्रभाव को रोको। भारत ही एक भूमि है जहां पर हम बच सकते हैं, बाकी सब बेचारे नर्क में जा रहे हैं, सबका भला सोचो। ये जो बॉलीवुड वाले हैं अगर कुछ संपर्क में आए आपके तो उनको भी समझाओ भाई बॉलीवुड ये बंद कर, हॉलीवुड है ये गुड गुड नहीं है, डुग डुग है, ये तेरी दुर्गति होगी, नर्क में जाना पड़ेगा, मत करो, समझाओ। क्यों, जब तक समझाएगा कोई नहीं, किसी को तो समझ कैसे आएगी। प्रभुपाद ने विदेशियों को समझाया, उन्होंने समझा, भक्ति को अपनाया, तो शुभ्न कहा गई, लक्ष्मण जी को कहने लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो अपने भाई का सेवक हूं, अगर तुम मेरी सेविका बन गई तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम अत्याग हो सकता है, तुम राम जी की पहली पत्नी ऐसी है, तुम बड़ी रूपवती बड़ी सुंदर हो तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, वो तुम जाओ उन्हीं को कहो, और हो सकता है पहली वाली पत्नी को छोड़ने, लक्ष्मण जी मजाक कर रहे हैं, उनके पास आ गई, ए तेरा भाई तो ऐसे ही है, मैं इतनी सुंदर तुम इतने सुंदर हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो राम जी कहते हैं देखो सुंदरी मेरी पत्नी मेरे साथ में है, आकर समझ यही कारण है बीच में दोनों के, आई सीता माता को खाने के लिए स्वरूप न कहा असली स्वभाव कहा ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, बोलो खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये नकली सुंदर बनी हुई है ना असली रूप राक्षसी आ गई मान ले। तो तब लक्ष्मण जी राम जी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण इस राक्षसी को दंड दो, लक्ष्मण झटा कर नाक कान उसके काट लिए, उसकी जो है ना दुर्गति कर दी, नाक कान काट दिए, तो बस अभी रावण का भी काम आगे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसने जाकर के शूर्पनखा ने खर और दूषण को बताया, तो दूषण जो है उसने राम पर आक्रमण कर दिया 14,000 राक्षसों के साथ, और भगवान राम ने दूषण को साफ कर दिया, 14,000 राक्षस साफ। अभी राक्षसों का भार उतारना है ना, और बहाना तो बनाना है कुछ ना कुछ, बिना बहाने के तो कुछ करते नहीं भगवान, भगवान दया के सागर। तो दूषण को मार दिया 14,000 राक्षसों के साथ, और अभी जो राक्षस मारे उनमें से एक राक्षस बच गया, उसका नाम था अकंपन। ये अकंपन रावण के पास गया और रावण को कहता है देखो ऐसा है दो राजकुमार आए हैं बड़ी शक्ति उनमें है, पर हे लंकेश मैंने देखा उनकी पत्नी इतनी सुंदर है वो तुम्हारी पटरानी बनने के लायक है, तुम जाओ उसकी पत्नी को हर के ले आओ। राक्षस प्रति राक्षस पंगे लेते हैं और मरते हैं फिर। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों राक्षसों के पंगों तक ही हम अपनी कथा को आज रखते हैं, कल और आगे बढ़ेंगे, कल रामनवमी है, राम जी का प्राकट्य है कल, और राम जी के प्राकट्य का आनंद लेना है, कल भगवान का अभिषेक होगा। सायंकाल को क्या प्रोग्राम है ब्रिज प्रेम, सायंकाल का प्रोग्राम भी आपको बता देते हैं, 7 बजे शाम को 7 बजे नौका विहार होगा, यानी कि बोट फेस्टिवल होगा। तो नौका में कौन बैठेगा, अपने राधा राजवेरे नहीं बैठेंगे, सीताराम जी को बिठाया जाएगा, सीताराम लक्ष्मण जी नौका में कल विहार करेंगे, पानी कहां से आएगा, भरेंगे पानी भर दिया जाएगा वहां पर, और नौका में सीताराम घूमेंगे, 7 बजे नौका विहार होगा। उन्होंने सात कहा था, आप कहते साढ़े सात। कितना आप ब्रिज प्रेम जी, अभी असीम जी से समझौता कर लिया उन्होंने, कहते नहीं ठीक है, साढ़े सात ही, साढ़े सात, सात बजे आरती, साढ़े सात नौका बिहार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम
हरे राम,
हरे राम
हरे राम,
राम
राम राम
हरे
हरे,
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण,
चैतन्य
चैतन्य
प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत,
श्री अद्वैत
गदाधर,
गदाधर
श्रीवासादि,
श्रीवासादि
गौर भक्त,
गौर भक्त
वृंदा,
वृंदा
नमा ओम,
नमा ओम
विष्णु पदाया,
विष्णु पदाय
कृष्ण पृष्ठाया,
कृष्ण पृष्ठाय
भूतले,
भूतले
श्रीमते,
श्रीमते
भक्ति वेदांत,
भक्ति वेदांत
स्वामी,
स्वामी
इति नामने,
इति नामने
नमस्ते,
नमस्ते
सरस्वती देवे,
सरस्वती देवे
गौरवाणी,
गौरवाणी
प्रचारणे,
प्रचारिणे
निर्विशेष,
निर्विशेष
शून्यवादी,
शून्यवादी
पाश्चात्य देश,
पाश्चात्य देश
तारिणे,
तारिणे
बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय,
बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय,
बोलो राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण
जानकी
राम लक्ष्मण जानकी
राम लक्ष्मण
जानकी
राम लक्ष्मण जानकी
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
गोविंद गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा नमन हरि गोविंद जय जय,
राधा नमन हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद,
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम
राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे।
धन्यवाद। अब सब लोग प्रसाद ग्रहण करो।
हरी बोल।